जो ब्रह्मा के भी आराध्य जगत के आराध्य हैं, उनको अपना जमाई मान करके सोचा है ये छोटे सा लड़का ही है, युवक जैसा। शंकर जी सब समय सदा है ना, सदा सी, इसलिए उनका यौवन वृद्धा ये सब कुछ बदलता है। उसने सोचा जे उम्र में हमसे जैसा छोटा सा दिखता है, तो उन्होंने मान लिया छोटा सा मान करके अवज्ञा करने लगा। तू हमारा जमाई हो करके, हमारा बेटा जैसा हो करके, और सभा में हमारा अपमान करता है। तो कहेंगे जिसे ये दक्ष प्रजापति का जमाई हो करके, इसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, सभ्यता नहीं है, भद्रता नहीं है, बंदर जैसा है, सब लोग मैं अपनी बेटी को क्यों इसको दिया। अरे मैंने बेटी अपने आप लिया तो विष्णु काल ने कैसे हमारी बुद्धि को चौपट कर दिया, और ये ब्रह्मा जी हमारी बुद्धि को चौपट करके और हमारी स्त्री को समझा बुझा करके लिप पोत करके उसकी बुद्धि, और ऐसे भाव आवेश में हमारी लड़की की शादी कराने, तो तुमसे हम शादी थोड़े करते। हमारी लड़की कितनी सुंदरी, रूपवती, गुणवती, और तुम जैसा गुणहीन व्यक्ति, और गाली गलौज करने लगा। शंकर जी चुपचाप सिर झुका करके सुन रहे हैं, कुछ भीतर भीतर मुस्कुरा भी रहे हैं। सब लोग डर के मारे कांपने लगे, ये शंकर जी की निंदा कर रहे हैं। अरे जाओ, आज से तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, जितने कपालिक हैं, कपालिक माने क्या, मरने के बाद में जो खोपड़ी होती है उसी में मदिरा रख करके पान करते हैं, अचार बचार भ्रष्ट हैं, और क्या जिसको कोई तत्व ज्ञान नहीं है वैसे ही व्यक्ति लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, और तात्विक वैष्णव लोग, संत लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये कह करके सवाल छोड़ करके इतने में वहाँ पर और शंकर के जो नंदी मुखी इत्यादि जो बैठे थे
नंदी भृंगी,
उनसे कुछ बात तर्क वितर्क होने लगा, और तर्क बाद में वो और पड़ गया, और शत्रुता दोनों में खूब ठन गई। शत्रुता ठनती है दोनों तरफ से, किंतु इनके तरफ से नहीं, उन्हीं के तरफ से। केवल मात्र दक्ष प्रजापति शंकर जी को अपने जमाई जान करके भी अवज्ञा करके उनको अब किसी भी विषय में यज्ञ में भाग नहीं दे। वो लोग यज्ञ करते हैं प्रजा की सृष्टि के लिए, इसलिए उनका भी एक भाग रहता है, वो भाग नहीं देता। थोड़े देर के बाद में वो और बढ़ गया कुछ, उसके यहाँ शंकर जी को नीचा दिखलाने के लिए बहुत विशाल यज्ञ किया, सब देवताओं को बुला रहा है, किंतु अभी इसी के बीच में एक और घटना हुई। घटना ये हो गई, जब दोनों में कुछ वैमनस्य चलने लगा, उसी समय में पार्वती सती को लेकर के और शंकर जी त्रेता युग में, जहाँ पर रामचंद्र जी का वनगमन हुआ था सीता जी को लेकर के, और लक्ष्मण जी लेकर के वन में गए थे, और सीता जी की चोरी हो गई थी, रावण हर ले गया, और उस समय में रामचंद्र जी पागल जैसे हो करके हाशिते 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 कह रहे हैं, पछाड़ खा करके गिर रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, नदी से पूछ रहे हैं, अरे गोदावरी तूने सीता जी को देखा, वो किधर गई, हिरणों से प्यारे तुम्हें तो बड़ी प्यार करती थी, सीता जी को देखा, मेरी सीता जी कहाँ गई, एकदम पागल जैसे हो। उस समय ही शंकर जी अपनी भार्या सती को लेकर के, सुना जब वो वन जंगल में आए हैं, ध्यान में उनको दिख पड़ा, और उनका दर्शन करने के लिए दंडकारण्य में पहुंचे। रामचंद्र जी तो वृक्षों से मिल मिल करके रो रहे हैं और पूछ रहे हैं। उसी समय शंकर जी सती जी को लेकर के उनकी बहुत दूर से परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करके कुछ बोले नहीं, अपना परिचय भी नहीं दिया, बहुत दूर से रह करके साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके और भाषित। उसी समय सती जी ने कहा जय प्रभु आपने किसको प्रणाम किया, मैंने कहा मैंने किसको प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, आपके इष्ट देव कहाँ हैं, आप ये देख नहीं रही है, कितने दिनों तुमको इनकी कथा सुनाई, प्रभु मुझको एक संशय हो, संशय यह कि दासरथी जो पुत्र राम हैं, जिनकी भार्या को चुरा ले गया रावण, और उनको पता नहीं चला ये कौन ले गया, और वो रो रहे हैं पागल होकर के, कामुक जैसे, कामुक व्यक्ति जैसे, तो उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, न कि आपके इष्ट देव कुछ परब्रह्म जो राम है वो अलग है कोई, इनको तो मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ये तो अनभिज्ञ हैं, इनको सर्वज्ञता इनमें नहीं है और शक्तिमत्ता भी नहीं है। यदि कोई ले गया तो उसको मारपीट करके या जैसे तैसे ले आ सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते थे, तो ये उद्धार करने में भी समर्थ नहीं है, इनको पता ही नहीं ये कौन ले गया, तो सब प्रकार की शक्ति से, सर्वज्ञता और शक्तिमत्ता से ये चूक, ये तो भगवान हो नहीं सकते। भगवान तो सर्वांतर्ज्ञानी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, इसलिए ये तो भगवान का लक्षण ही में नहीं, इसलिए आपके आराध्य कैसे। अरे बहुत कुछ कहा इसके विषय में, मुस्कुराने लगे, गुरु के बात में संदेह नहीं करना चाहिए, फिकर में वो सोते हैं, अब इसका कुछ गड़बड़ी, गुरु के प्रति ऐसी भावना रखनी चाहिए, ये सर्व अंतर्यामी हैं, उनके प्रत्येक बात में एकदम पूर्ण विश्वास होना चाहिए, किंतु जैसे तैसे गुरु में नहीं, गुरु भी सर्वज्ञ और शक्तिमान होना चाहिए, अंततः मध्यम वैष्णव तो होना ही चाहिए, तो यदि ऐसा नहीं है तो उसमें आरोप करने से, जब बबूल का पेड़ में आरोप करते हैं ये आम है तो आम हो जाएगा, नहीं, आम में ही आम का आरोप करना। उन्होंने सोचा जैसे सती ने देखा, जैसे भगवत्ता का लक्षण नहीं है भगवान मान रहे हैं, और शंकर जी देख रहे हैं इसका दुर्भाग्य है, जो हमारी जैसे बातों में भी इसका विश्वास नहीं है, आपने गुरु में भी विश्वास, से आत्मा अब इसका विनाश बहुत जल्दी। अब उन्होंने कहा कि यदि हमारे बातों में विश्वास नहीं है तो तू जरा परीक्षा ले लो। ठीक, शंकर जी जानबूझ करके एक वट के वृक्ष की छाया में कुछ चिंता करते हुए, भगवान नाम करते हुए, राम राम करते हुए, और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए, और गदगद हो रहे हैं, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को कर रहे हैं जो देवता लोग, मुक्त पुरुष भी वो
देखने के
समझ नहीं सके जी ये भगवान है कि नहीं, उनको भी संदेह हो सकता है, और वो गदगद होकर के वहीं पर खड़े हो गए। इन्होंने कहा जैसे आचार्य परीक्षा ले लें, सोचा जी क्या कैसे परीक्षा लें, साथ ही साथ सोची मैं तो किसी का रूप बना सकती हूँ, और सीता का क्यों न रूप ला बना, ये पागल होकर के इधर उधर खोज रहा है, मैं चलूं सीता जी का रूप बना करके, देखते ही वो आकर के हमसे लिपट जाएंगे, अरे सीते 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 तू कहाँ थी। यदि उन्होंने नहीं समझा और हमको आलिंगन कर लिया, समझे ये मनुष्य है, और यदि ऐसी स्थिति में भी हमको सीता को देखकर के भी
पहचान,
यदि पहचान लिया तो मैं समझ जाऊंगी जैसे ये प्रबंध है शंकर जी के उपासना, ऐसा सोच करके तत्क्षणात् एक सेकंड में सीता जी का वैसा ही रूप बनाया जैसे कि उनको चोरी करने के समय में वो थी, रावण ले गया था। अब वो रूप बना करके और वो इधर ना देखकर के उधर देखने लगते हैं, इधर करते हैं, फिर वो रामचंद्र जब उधर चलते हैं तो वो फिर उनके सामने चली आती है, फिर इधर आते हैं तो इधर, मानो जैसे ये देख नहीं रहे इसके सामने। रामचंद्र जी ने सोचा अब इस पर दया करनी चाहिए, ये शंकर की शक्ति है और उनकी सेविका है, इसे इस पर कृपा करनी चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने उनसे हाथ जोड़ करके पूछा, माता जी आप अकेले यहाँ पर कैसे घूम रही हैं? शंकर जी घर में चले गए, आप उनके साथ में देकर के किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं?
आप उनका होश हो गया, अरे हमको कैसे समझ लिया, ये साधारण पुरुष इसको मान देते, ओह साधारण पुरुष, ये शंकर जी कभी भूल नहीं कर सकते,
इसलिए ये
ब्रह्मजी है।
अब उनको विश्वास, अब विश्वास होने के साथ में उनको प्रणाम किया, जब उठ करके जब प्रणाम करके बैठ, जब आंख खुला तो देखा क्या, जितने पेड़ पौधे जानवर जो कुछ है सब सीता और राम के रूप में दिखाई,
सीता जी का तहन दिखाता नहीं थी किंतु सीता जी आ गए, और जिधर देखता है देखते हैं उधर ही देखती हैं ये राम और सीता, राम सीता राम सीता जोड़ा सब के सब। अब तो और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, इसके बाद में फिर आंख बंद करके और फिर प्रणाम किया और आंख खोली तो देखा जो केवल राम हासिते करके हैं विलाप कर रहे हैं और उनको देखा भी इसी का और कहा ये तो प्रॉब्लम है। हमने भूल की सी शंकर जी की बात नहीं अपने पति और गुरु की बात नहीं मानी अब तो राम बड़ी लज्जित हो गई और साथ ही साथ अपना रूप को सती का बना लिया और धीरे धीरे पैरों से चल गई। जब वहाँ पर पहुँची तो शंकर जी ने देखा ये आ रहे हैं पहले परीक्षा कर लिया तो नाथ आपने कहा कि ये राम परब्रह्म राम है अब मैं क्या उनकी परीक्षा लूँ मैंने क्या कोई परीक्षा नहीं कर शंकर ने देखो तो ये झूठ भी बोल दिया महापुरुषों के निकट या तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जब झूठ बोल दिया तो क्या करो अवसर आने पर कहो जो हमसे ऐसा ही कहा था झूठ बोला सच बोलो उसको ढकने की चेष्टा मत करो नहीं तो और 50 झूठ बोलना पड़ेगा तुमको और अपराधी होता जाएगा
तब भी जो झूठ ढकेगा नहीं
वो तो जान जाएंगे किंतु ये तो समझ आ कि हम उनको धोखा दे सकते हैं हमारी धोखा में आने वाली वस्तु है वो समझ लेगा इसलिए उसका सर्वनाश हो जाएगा अपराध होगा। इसलिए शंकर जी बोले जा रही एक तो इसने अपराध किया हमारी बात नहीं माना दूसरी बात उनको सीता जी का रूप लेकर के और उनको परीक्षा किया और दूसरे तरह से कर सकती थी। तीसरी बात हमने पूछा तो ये भी बहाना बना रही है झूठ बना रही है शिष्य को कभी गुरु के सामने इसने सभी काम अब इसकी बुद्धि भ्रष्ट है अब इसको उचित शिक्षा ही चाहिए समझेगी ऐसे नहीं समझेगी। बस मन ही मन उन्होंने कुछ संकल्प कर दिया जो संकल्प किया ना कभी उस दृष्टि बन गई साधु 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 हो गए पार्वती जी की अंधारी ये साधु साधु आकाश मार्ग के हो रहा है। शंकर जी से पूछी प्रिय ये साधु साधु शब्द क्यों हुआ आपने क्या मन में संकल्प किया जानना चाहे तो उन्होंने कुछ बतलाने मौन हो उन्होंने यही नहीं कहा ये नहीं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं ऐसा नहीं कहते तो वो झूठ बात हो गई। इसलिए वो लोग बड़े कल्याण हो गया देखते हैं कि मरने वाला व्यक्ति है घर वाले कहते हैं कि महाराज जी कृपा कर दीजिए ये आदमी बच गया मरे नहीं तब ये इसका कल्याण है अरे वो कल्याण तो ठीक है ये बच जाएगा किंतु कल्याण भगवान का नाम सुना दिया और मर गया था जी इसका कल्याण हो गया वो समझे अरे अरे आने पर कहने पर भी कल्याण नहीं है मर गया तब तो उन्हें साबित होने वो लोग ऐसा विचार करके और बढ़ गए भगवत तत्व और ये सब तत्व बड़ी गंभीर तत्व है इनको साधारण मनुष्य के लिए समझ लेना आधारित है। सती जी सब समय शंकर जी के साथ में करोड़ों वर्षों से हैं और उनकी बुद्धि विचलित हो गई तो हम लोगों का भी विचलित ये देखो सावधानी नम्रता के साथ में संतों के साथ में व्यवहार समझने की कृपा उनकी चरण कुली की कृपा से ही हम तत्वों को कुछ समझ सकते हैं। शंकर जी ने अभी ये मन ही मन किया जब इसने बाह्यतः बाहर से हमारी आराध्या देव का रूप यदि धारण कर लिया अब इस रूप के द्वारा जब इस रूप से उस रूप को बनाया है अब इस रूप से हमारी भार्या के रूप में अब इसका व्यवहार अब इसकी कोई भी सेवा मैं नहीं ग्रहण करने योग्य हूँ अब ये हमारी सेवा के योग्य हो हमारी मैया के समान अब सत्य मेरी हो गई पिताजी के रूप में हो गई अब जैसे एक कपड़ा है ना? एक कपड़ा है गुरु जी ने उस कपड़े से स्नान करके ऐसे ऐसे पूछ उठ लिया एक जूता है कपड़ा तो छोड़ जूता वो थोड़ा सा लगाते हैं अब वो जूता हमारा जब गुरु जी कहीं चले गए या गुरु जी अप्रकट हो गए तो वो जूता को अपने व्यवहार में लाना उचित है कि नहीं क्या करेंगे वो हमारा सेवक नहीं है सेव्य होगा हमारी कोई चीज है ने? कोई भी चीज मेरी है गुरु जी ने कृपा करके उस चीज को अपने व्यवहार में ले लिया अब उसको क्या करना चाहिए अब उसको अपनी सेवा में मत लगाओ वो अब हमारा सेव्य इसलिए गुरु सेवक है मान्यता इसी दृष्टि से इसलिए गुरु जी का व्यवहार किया हुआ कोई चीज है हमारे लिए वो मान्य है इस रूप में रखना चाहिए। उन्होंने देखा जैसे अब ये हमारी ही थी, किंतु अब ये तो भगवान का सीता जी का रूप बनाया, अब उस रूप से अब मेरे सब समय सेव्य रहे, अब उसके द्वारा कोई मैं सेवा नहीं ग्रहण करा, इसलिए मनी मन उनको माता का स्थान दे दिया। इसलिए पुरुष दृष्टि हुई, आपके समान और दूसरा जगत में ऐसा कोई है भूतो नो भविष्यति, जो इस प्रकार से अपनी चीज को भी अब भगवान से संबंधित होने के नाते सदा के लिए त्याग कर दिया। ऐसा त्याग करना बड़ा भारी कठिन, इसलिए आकाशवाणी सती जी इसका मर्म समझ गई। क्यों? उनके व्यवहार से देखा जी, अब उस रूप में हमसे व्यवहार नहीं करता है, ना बातचीत करते हैं, ना कुछ करते हैं। अब पहले बाएं तरफ में आसन देते थे, अब सामने आसन देते। अब सती जी सोच रही हैं, जिस शरीर से अब शंकर जी की सेवा नहीं हो सकी, मैं उनकी सेविका नहीं रह सकी, अब इस शरीर को रखना देखा। कोई भी चीज यदि भगवत सेवा में नहीं लगती है तो बेकार। यदि हम भी किया की सुख लगी आछे केनवा आछे प्राण की सुख लगी, ये शरीर से यदि भगवान की सेवा नहीं होती है, कदन भार गोपियां कहती हमारा शरीर बेकार का है, मिट्टी का बना हुआ, ऐसे बेकार शरीर को ढोना किसी चीज की जरूरत नहीं है। यदि कृष्ण की सेवा में यह शरीर नहीं लग सका तो भगवान की सेवा में यदि यह शरीर नहीं लगता बेकार का है। इसलिए सती जी बड़ी दुखी है, जैसे अब यदि इस सेवा से शरीर से उनकी सेवा में नहीं कर सकती तो ये बेकार का है, बड़ी दुखी हो और शरीर को छोड़ने के लिए इसी समय में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई भी चीज शंकर के लिए नहीं रखी गई, सब देवताओं का भार वहां रखा था इनके लिए। सती जी वहां पर पहुंची, शिव के मना करने पर भी पार्वती जी ने कहा जैसे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं पिताजी के घर जाना चाहती हूँ, अभी यज्ञ हो रहा है, सब हमारी बहनें आए, मैं भी जाऊँ। कहीं मत जाओ, जाने से निरादर होगा, सह नहीं सके। यद्यपि कोई निमंत्रण नहीं होने पर भी पिता के घर में, गुरु के घर में और बुला लो, तो वही तो पिता का घर है, पिता के घर हम आप बुला लेता घर अलग होता है,
नाना का घर आप बुला लो,
नाना का मामा का घर अलग होता है,
पिता पिता नाना कैसे।
तो मैंने गुरुजनों के यहाँ विशेष करके पति और गुरु उनके यहाँ बिना निमंत्रण का नहीं जा सकते, किंतु यदि विरोध हो तो मत जाओ, विरोध हो बिना निमंत्रण का मत जाओ, नहीं तो वहां पर कुछ उत्पाद होगा। इनकी बात नहीं मानी, अकेले चल दिया, रोते रोते शंकर जी ने पीछे थे अपनी नंदी मुख और सब चीजों को भेज करके वहां जाकर के देखा जिस चीज का अपमान हो रहा है, और इसको माता का शिष्ट और किसी ने भी प्यार नहीं किया, बाने भी डर के मारे पिताजी के डर के मारे इसका अभिवादन नहीं किया, यहाँ तक कि माता जी को भी जैसा बोलना चाहिए प्यार करना चाहिए पहले गोदी में ले लेती, बहुत लाड़ प्यार करती है, आज गोदी में तो लिया उतना लाड़ प्यार नहीं, और अपनी बहनों उनकी बहनों का कितना आदर सम्मान हो रहा है उनका नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञशाला में ये गई देखा शंकर जी को, ये तो नहीं दिया गया है भाग, बस शरीर छोटी तो एक तो पहले से मन खराब है, शंकर जी शरीर को ग्रहण नहीं कर रहे, अब इसको रखना नहीं चाहिए और कारण भी पड़ गया, ये शिव का यहाँ पर मान किया गया है, बस अपने पिता को बहुत कुछ गाली गाली होती है, जैसे मैं तुम्हारे ये शरीर से पैदा होकर के मैं अपवित्र हुई हूँ, अब इस शरीर को मैं नहीं रख सकती, ऐसा कह करके अब योग अभ्यास में बैठ गई और आज अपने आप शरीर से निकली और छह मात्र में जल करके शरीर को छोड़ दी, किंतु मूल कारण यही था रामचंद्र जी सत्य के प्रति और शंकर के प्रति कुछ अपराध हो गया था, अब वही जन्मी कहां
हिमालय
हिमाम के रूप में हिमालय। तात्पर्य क्या, शंकर जी अपने आराध्य देव का दर्शन करने आए और अपने पत्नी को भी
ऐसा देखा कि उनकी बात नहीं मानी और सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए उस शरीर को वो अपनी सेविका होने के लिए मना कर
दिया,
इसलिए उन्होंने शरीर को त्याग किया। तो इसका मतलब यह है कि शिव जी के भी आराध्या राम को मिल गई और उनका नाम बन गया, इसलिए वो शंकर जी और राम क्यों पृथ्वी की दृष्टि से ही अभेद माने जाएंगे, यथातथा वो शंकर के आराध्य, पार्वती जी के भी आराध्य हैं और सती जी के भी वो आराध्य। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में एक और प्रसंग आता है, वो प्रसंग आता है कृष्ण जब द्वारका में चले गए तो उनको पुत्र नहीं होता, तो पुरोहितों के कहने से हिमालय में गए और शंकर जी की आराधना, और शंकर जी प्रसन्न होकर के कहा जे वर मांगो परम ब्रूही, तो कृष्ण ने कहा कि आप मुझे पुत्र दीजिए, तो शंकर जी मुस्कुराने लगे कि ये यही लौकिक लीला है, ये लौकिक लीला का नर लीला का ये अनुरूप ये हमारे आराध्य होकर के भी कर रहे हैं, अच्छा जाओ तुम्हें पुत्र, तब वहीं पर शाम उनको पुत्र के रूप में लिए शाम। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करके कृष्ण को पुत्र हुआ इसलिए वो उनके आराध्य हैं, किंतु उनकी वहीं पर जो सौ स्तुतियां हैं उसके देखने से ऐसा मालूम पड़ता है, शंकर जी कहते हैं कि हमको भी ठग रहे हैं उस सौ स्तुति में, आप मेरे आराध्य हैं किंतु जगत में इस स्तुति को दिखलाने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमसे पुत्र मांग रहे हैं। दूसरी बात एक और वहीं पर है, एक बार कृष्ण से और शंकर जी से लड़ाई छन गई, खूब अस्त्र शस्त्र चलने का युद्ध हुआ, युद्ध का कारण था बाणासुर की एक कन्या थी उषा, उसको हरण अनिरुद्ध ने हरने की, अनिरुद्ध को मारने के लिए युद्ध करने लगा बाणासुर, कृष्ण को पता लग गया नारद जी से जो उनको कैद खाने में बंद कर रखा है, बस कृष्ण अपनी सेनाओं को लेकर के झट वहां पर पहुंच और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। जब वो हारने लगा कृष्ण उसके शस्त्र बाहुओं को काटने लगे, केवल मात्र अब चार धाम हाथे रह गए, तो वो चिल्लाने लगा शंकर जी के लिए, रोना हमारे आराध्य है मेरी रक्षा, तो शंकर जी उसी में प्रकट होकर के कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ, घना घोर युद्ध हुआ, युद्ध में कृष्ण ने उनको शंकर जी का एक ज्वर है रुद्र ज्वर, तो कृष्ण ने वैष्णव ज्वर निकाल छोड़ दिया और शंकर जी जम भाई लेने लगे बीमार पड़ गए हार गए और अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जम भाई लेकर के वो बुखार में गिर गए। उस समय में कृष्ण उसको प्राण बध करने के लिए जब बाण उठाया तो पार्वती जी नंगी होकर के वहीं पर खड़ी हो कृष्ण के सामने, बस उन्होंने सिर हटा दिया, कहा जी सर आप तो वहां पर खड़ी हो गई, हमको कुछ वर दीजिए, क्या वर चाहिए, यह उसको हमने पुत्र मान रखा है दोनों ने, इसलिए कृपा करके आप इसको मारिए मत, आप कुछ इसको वर दीजिए। तो कृष्ण ने कहा जो अच्छी बात है, मैं तो आप लोगों की भक्ति से वशीभूत हूँ इसलिए अब इसको मारूंगा नहीं, अब इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आपकी सेवा करेगा और हमारी भी इस पर कृपा रहेगी, ये चार भुजाओं वाला हो। इसके बाद उसने अपनी लड़की का विवाह उनके साथ उनके लड़के के साथ में करा दिया, पौत्र के साथ में करा दिया और उसकी चार भुजाएं छोड़ दी, उनका यहाँ पर देखा जाता है, वहां पर भी शंकर जी ने इनका जो स्तव स्तुति किया है भागवत में, वो भी उनको अपने प्रभु के रूप में अपने आराध्य के रूप में उनको वहां पर स्तव स्तुति, ऐसा भी देखा। एक और देखा जाता है श्रीमद् भागवत में, एक मध्य प्रदेश में राजा था, उसका नाम था पौंड्रिक वासुदेव,
पंडुक बांट दे। उसने क्या किया, लकड़ी के कुछ ऐसे यंत्र से उसने दो हाथ नीचे की तरफ में यहाँ लगा, एक हाथ इधर से और एक हाथ उधर, और अपने को चतुर्बाहु चतुर्भुज वासुदेव कहा, मैं चतुर्बाहु वासुदेव, उसको श्रीगाल वासुदेव भी कहते हैं वैष्णव लोग, उसको
श्रीगाल
श्रीगाल कहते हैं। ये श्रीगाल जैसे कि भों भों करते हैं ना, हम 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 करते हैं, ऐसे ही करने वाला था तो विष्णु नहीं किंतु अपने को विष्णु करते। कृष्ण के पास में एक अपने दूत को भेजा, जाओ दूत कृष्ण से कहना द्वारका में, वो अपने को वासुदेव क्यों कहता है, वासुदेव मैं हूँ, मेरी चार भुजाएं हैं, उसको तो चार भुजाएं हैं नहीं, और वो लगाता है तो अपनी चार भुजाओं को हटा दे और अपने को वासुदेव कहना बंद कर दे। तो कृष्ण सुन करके और उस सभा में हंस करके कहने लगे, ये वो श्रीगाल वासुदेव है, ठीक है, तो इसका निर्णय भी शीघ्र ही हो जाएगा, जाकर के कह देना ये ठीक है, वो वासुदेव छोड़ेंगे नाम कि तुम छोड़ेगा, ये रणक्षेत्र में ही ये होगा, ऐसा कह करके उस पर कृष्ण ने आक्रमण किया। युद्ध जब बोलने लगा, जब ये हारने लगा, तो काशी नरेश को इसने बुलाया, इसके सखा थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो हम दोनों मिलकर के कृष्ण को हराएं, पराजित करें। युद्ध होने में कृष्ण ने क्या किया, उसकी सहायता करने वो आया था, इसलिए उसने क्या किया, कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया पंडित वासुदेव, और साथ ही साथ में इसको भी काट करके इसका शरीर फेंक दिया काशी में, जहां पर उसके देहली पर उसके लड़के और स्त्रियां सब देख करके रोने। जब वो कट गया उसका शरीर, तो उसका लड़का तो था काशी नरेश, अब वही होने वाला था युवराज, अपनी समस्त सेनाओं को लेकर के कृष्ण पर आक्रमण किया। अब आक्रमण करने में कृष्ण ने क्या किया, पहले तो उसको मारा और चक्र के द्वारा सारी काशीपुरी को एकदम जला करके भस्म कर दिया, बस शंकर वहां से भगे और एकाम्रकानंद भुवनेश्वर के पास में, भुवनेश्वर में जगन्नाथ जी के शरण में गए, त्राही त्राही कह करके वहां पर, वहां पर अब तक वहीं पर रहते हैं, इसलिए उनका प्रधान अवस्थान काशी के बदले कलयुग के ईस्ट इधर में, पहले वहां पर काशी में अधिक था। इस तरह से देखते हैं ये श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। एक वर्णन और देखते हैं, रामचंद्र जी लंका पर जाने के समय में वहां पर शंकर जी की आराधना की स्थापन किया, जिसको रामेश्वर कहते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है, जिस समय शंकर जी की स्थापना हुई, जितने वहां पर लोग थे, रामेश्वर महादेव की जय देने, रामेश्वर महादेव की जय, उसमें से कुछ बुद्धिमान थे, वो ये कहने लगे कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम के भी ईश्वर हैं, इन्हीं के वजह से ये लंका में जाकर के विजय प्राप्त, इसलिए ये राम के ईश्वर हैं, इनकी पूजा करने से सर्वार्थ की सिद्धि होगी। इसको सुनकर के देवता लोग कुछ असंतुष्ट हुए, बोले ऐसा मत कहो, रामश्च असौ ईश्वर, राम भी ईश्वर हैं और शंकर जी भी ईश्वर हैं, दोनों मित्र हैं, इसलिए दोनों की जय हो, राम की भी और शंकर की। इतने में शंकर जी से सहा नहीं गया, उनके लिंग से खूब जोरों से आवाज आई, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो, राम जस्य ईश्वर, राम ही जिनके ईश्वर हैं वो हैं, इसलिए रामेश्वर का तत्व है, राम ही जिनके ईश्वर हैं, किंतु नर लीला में दिखलाते हैं जिन हमारे वो आराध्य हैं, दैव लीला में मित्र दिखलाते हैं, और परमार्थ लीला में शंकर जी के भी आराध्य हैं, इसलिए कृष्ण या राम सर्व आराध्य हैं, शंकर जी के आराध्य, किंतु इस लौकिक लीला में जैसे साधारण ब्राह्मणों को भी कृष्ण प्रणाम करते हैं, राम प्रणाम करते हैं, साधारण ब्राह्मणों को भी, यहाँ तक कि दोषी ब्राह्मण को भी प्रणाम करते हैं, वैसे शंकर जी को लौकिक लीला में वो सम्मान। इसलिए लौकिक लीला में राम के ईश्वर, नर लीला में और कैव लीला में, देव लीला में बराबर बंधु मित्र क्या है, हरिहर एक आत्मा, और परमार्थ लीला में कैसे, जैसे कि गोपीश्वर महादेव वृंदावन, यहाँ पर गोपी होकर के कृष्ण की बाल्य लीला में हम देखते हैं, कैलाश से वो शंकर आते हैं और यशोदा जी से अन्य विनय करते हैं कि तेरे लाला का दर्शन करा दे, यशोदा जी नहीं दिखलाती, ये बैल पर सवार होकर के सर्पों की माला पहन करके, भुजाओं में अलंकार पहन करके, सर्पों की सांप फुफकार रहे हैं गले में, इधर में उधर में, और त्रिशूल में भी जड़े हुए हैं, भयंकर वेश, जटाओं को सर्पों से बांध रखा है और उनकी माला कैसी झूल रही है,
मुंडा माला
नहीं सर्पों की माला है, और वो यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं और देख करके वो डर गई, हम ऐसे और भर का हम दर्शन नहीं कर रहे। तो शंकर जी ने अलग जगाया, अलग थलग थलग यही किया, तो ही प्रभु वहां पर रोने लगे, अब उनकी रुलाई बंदे नहीं होती, कहा जी कहां से ये ऐसा आ गया, ये एक साधु जो सब समय रुला रहा है, तो किसी ने सखी आ जाए उसे दर्शन करा दो, तुम्हारा लड़के का रोना बंद हो जाए, नहीं तो ये होता रह जाए, और कृष्ण भी उनको दर्शन देना चाहते हैं इसलिए रोने। थोड़ी देर के बाद मैया ने हाथों में काला धागा बांध दिया, गले में काला वो लगा दी, और कज्जल यहाँ तक भरपूर पूरी आंखों में मोटी मोटी लगा दी, और काले कपड़े से ढक लिया, काली बिंदी यहाँ पर लगा दी नजर न लगे, और काले सूप में, सूप होता है ना
फटका,
तो उसके नीचे और कपड़ा पोता हुआ काला, और उसमें उनको लेकर के और झट करके देख, बस ऐसा थोड़ा सा कपड़ा उठा दिया और दिखला करके, और बस इतने में भी जो दर्शन के जाए शंकर की इच्छा की, ऐसे शंकर के ये आराध्य जगत के आदमी नहीं समझते, इसलिए वृंदावन में कृष्ण का दर्शन और राज का दर्शन करने के लिए गोपी बन करके आए, वो भी पूर्णिमा दिखे की बात, कृपा जब वो वृंदावन में आए तो गोपियों ने दरवाजे पर रोक दिया, वृंदावन की सीमा पर, कौन है कहाँ जाना चाहता है, हाथ जोड़ करके बोले जी मैं कैलाश जा रहा हूँ, मैं रासलीला दर्शन करने के लिए आया, अच्छा यही पर खड़ा रहो, ऐसे नहीं जा सकते, जोग माया जी की कृपा से तब इसमें प्रवेश कर सकते हो, बस उन्हें बहुत लंबे समय तक जोग माया की आराधना की, जोग माया वहां पर उपस्थित थी, बोले क्या चाहते हो, मैं रासलीला का दर्शन करूँ, देखा रासलीला का दर्शन करेगा, बस हाथ पकड़ करके जबरदस्ती ऐसे शंकर जी को
ब्रह्मकुंड
में डुबा दिया और हाथ पकड़ के निकाल दिया, निकला तो देखा जैसे अत्यंत सुंदरी षोड़शी गोपी हो गई, एकदम गोपियों का सब कुछ जैसा उनका हो गया, कहे देख यहीं पर ईशान कोण में बैठो, यहीं से रात में रासलीला होगी, देख रासलीला आरम्भ हुई, गोपियां और कृष्ण से बातचीत होने लगी, आज रासलीला में उल्लास नहीं हो रहा है, मालूम होता है कोई विजाती व्यक्ति आया, ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखा ईशान कोण के एक कुंज में एक कोई गोपी बैठी, पर झट पकड़ लिया, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने तो नाम बतलाया नहीं था और जल्दीबाजी में वो जो कुछ कह भी देते तो हड़बड़ी में गड़बड़ हो गया, अरे तेरे ससुर का नाम क्या है, तेरी सास कौन है, तुम्हारी ननद कौन है, कौन गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, ये तो सब हुआ नहीं, ये प्रकट लीला में गोपी गृह में जन्म लेकर के और वहां पर विवाह होगा, शादी होगा, सचमुच में ननद सास ससुर होंगे, गांव होगा, तब कृष्ण की रासलीला में जाएगा, वो भी नित्य सिद्धाओं का संग से होना, ऐसे नहीं होता, एक बार एक वहां पर पहुंच जाएगा हो जाएगा, शंकर जी एक बार पहुंचे थे इसलिए इनकी सिद्धि नहीं, गोपियां बस दुलचे देने लग गई मुख खुला दिया, रोने जब लगे तो पूर्णिमा जी ने आकर के छुआ, अरे अच्छा जाओ इनके गुच्छे लग गए हैं इसलिए तुम्हारी सुकृति हो गई, बस अब तुम यह गेट पर खड़ा रहना, यदि कोई वृंदावन में प्रवेश करना चाहेगा तो यदि तुम्हारी आराधना करके प्रसन्न कर देगा तो तुम उसको योग्यता, तब वो वृंदावन में आकर के भजन कर सकता है। इसलिए गोपीश्वर महादेव जी की कृपा नहीं होने से वृंदावन में कोई नहीं। इसलिए वृंदावनावनी पते जय सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारद गोपीश्वर प्रेम निरुपाधि। हे शंकर जी आप निरुपाधि कृष्ण प्रेम हमको दीजिए। आप दे सकते हैं आप नारद सनातन उनके भी पूर्व पुरुष सनक सनंदन सनातन इत्यादि के द्वारा पूजित हैं। आप कृष्ण के प्यारे हैं इसलिए आप कृपा कीजिए जो वृंदावन में हमारा प्रवेश हो और इस रासलीला में प्रवेश करने योग्य हो जाए तो वो कृपा करके दे सकते। इसलिए शंकर जी का ऐसा ब्रज विलास स्तोम भी ऐसा कहा गया है जैसे ये कृष्ण को प्रेम को देने वाले हैं। तो आज उन्हीं का ये दिन है। आज या कल भी जिन लोगों ने किया है कल में थोड़ी सी ये बात थी जो उसमें त्रयोदशी लगी हुई थी सवेरे। तो जिस दिन त्रयोदशी हो सूर्योदय के बाद में और चतुर्दशी मिल जाए और रात में चतुर्दशी भी हो तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। स्मार्ट लोग करते हैं वैष्णव लोग नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कल नहीं किया। आज थोड़ी सी चतुर्दशी थी रात में अमावस्या आएगी किंतु फिर भी चूंकि इसका संयोग ही अच्छा है पर विद्या बलवान और पूर्व विद्या त्याग करनी चाहिए। इसलिए पूर्व विद्या को कल हम लोगों ने प्रत्याग करके आज ये पर विद्या शुद्धा नहीं पर विद्या चतुर्दशी अमावस्या मिली संयुक्त में आज हम लोगों ने शंकर जी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शन करने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए वैष्णव लोग कर सकते हैं। जितने भी वैष्णव में कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं किंतु फिर भी वैष्णव को शंकर जी का ऐसा महत्व और प्रभाव दे करके जो उनकी कृपा कर से हम लोगों को उसमें प्रवेश होता है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने अपनी टीका में हरिभक्ति विलास में उन्होंने ये वैष्णव मात्र के लिए करनी है ये विधि दी विधि किंतु कोई ना करे तो भी कोई बात किंतु अधिकांश लोग करेंगे। शंकर जी से और इस सनातन गोस्वामी से बहुत मित्रता है। जहाँ ये रहते हैं वहां पर शंकर जी के पास ही में रहते हैं वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पास फिर बनखंडी में गोवर्धन में चकलेश्वर कामेवन में जाते थे तो कामेश्वर नंदगांव में नंदीश्वर इसी तरह से उनका इसी तरह से प्रेम व्यवहार रहता है। शंकर जी कभी कभी इन पर कहते थे जैसे अच्छा मच्छर लग रहा है कभी मैं यहाँ नहीं रहूंगा आपके पास रहने से मच्छर लगता है गोवर्धन में चकलेश्वर में। तो उन्होंने कहा जी अच्छा अच्छा अब अभी तुम रहो आज देखो तो ये क्या होता है बस चुटकी बजा दिया बस मच्छर सब सुनते हैं कि अभी तक मच्छर नहीं लगता था आज कल ना जाने क्या होता है ये तो नहीं मच्छर। तो इसलिए वैष्णव के भी हम लोगों के भी आया इसलिए ब्रजविलासोत्सव में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी गोपियां भी इनसे ब्रज की प्रेम कौन गोपियां मांगती थी नित्य सिद्धा नहीं जो साधन सिद्धा हो गई हैं वो उनसे प्रार्थना करके और जो अभी साधन कर रहे हैं वो तो कभी नहीं जरूर प्रार्थना करेंगे। आज के दिन में स्मार्ट विधि से स्कंद पुराण के अनुसार में ऐसा लिखा गया है कि शंकर जी को आज थोड़ा सा पानी जल और बेलपत्र चढ़ा दिया जाता है तो प्रसन्न चढ़ाने की बात क्या एक बहेलिया था सुना जैसे सबसे प्रसन्न जल्दी होते हैं शंकर जी इनसे और कोई अधिक नहीं। तो उसने सोचा जैसे अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसने शंकर जी की पूजा आरंभ दो चार दिन हो गया और कुछ उसको हुआ नहीं वो बेल चढ़ाता था पत्ता और बेल भी हरा बेल तो उसने चढ़ाया था तो दो तीन दिन में प्रसन्न नहीं हुए उनकी एक कामना नहीं पूरी तब बेल उठा करके एक बेल उसको ये झूठ मूठ का ये पत्थर है लोग कहते हैं इसकी आराधना करने चाहिए बेल जमीन मारा बेल फट गया शंकर जी प्रसन्न हो गए आज तुम बेल हम पर चढ़ाया इसलिए मैं तुम प्रसन्न तो क्या चाहता है बोल साथ ही साथ उसकी इच्छा यदि मारने से भी बेल से लोगों की इच्छा पूर्ति करते हैं तो कैसे अवघड़ दानी इसको कहते हैं अवघड़ दानी
आशुतोष
आशुतोष महादेव। आज के दिन की एक बात स्कंद पुराण में लिखी गई है। एक बहेलिया था, वो जंगल में गया धनुष बाण लेकर के पशुओं का शिकार करने के। आज किसी तरह से पशु का शिकार नहीं मिला। रात में बाघ गरजने लगे, रात हो गई, चतुर्दशी की रात है ना, चारों तरफ अंधकार हो गया जंगल में। वैसे ही डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ बाई चांस वो था बेल का पेड़, उसी पर चढ़ गया और सोचा जिसे भाई रात में तो प्यास लगेगी, रात भर उतरना नहीं, पासे में एक सरोवर से अपने मिट्टी के घड़े में पानी लेकर के चढ़ गया। आज दिन भर शिकार खोजते खोजते कुछ खाया नहीं और रात में ऊपर में चढ़ा हुआ तो खाने का कोई प्रश्न नहीं। रात्रि के चार प्रहर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय
चार जाम।
अब 6 बजे से लेकर के रात सवेरे का 6 शाम से 6 ये 12 घंटा हुआ, तो 3 चौका और 3 घंटा, तो पहला प्रहर कहाँ समाप्त होगा?
6 से 8 24 तक,
9 बजे, 6 से 9 बजे ये पहला प्रहर। तो पहले प्रहर में वो ऊपर चढ़ा हुआ था, इतने में एक गाय चढ़ती हुई ये वहां पर हिरण वहां पर आई। वहां आकर के जब पहुंची, इतने में एक सिंह काज ने कहां से आ गया और एकदम जोर से गर्जन करके उसको पकड़ करके गिरा दिया। अब खाने वाला था उसको मार करके। गाय बोली हाथ जोड़ करके, भाई हमको तू छोड़ दे, हमारा एक बच्चा है, एक ही बच्चा है, वो मेरे लिए रास्ता देख रहा होगा, इसलिए मैं उसे दूध पिला करके अभी आ जाती हूँ, उसको अब उसको उसकी मौसी के पास में रखाऊंगी। मौसी मैंने
हिरण का बहन,
अपनी बहन के पास में रख करके आ जाऊंगी, मुझको तुम छोड़। अरे तू झूठ बोल रही, कभी भी हाथ का शिकार जाने के बाद में फिर आ सकता है, तो विश्व का जितना पाप है वो सब हमको लगे यदि नहीं आ। उसकी प्रतिज्ञा को सुन करके झूठ बोलने से जो नरक होता है वो हमको हो, पति के साथ में विश्वासघात करने से जो होता है वो पाप हमको मिले, ब्राह्मण की हत्या करने से जो पाप होता है वो हमको लगे, इस तरह से कर भगवान का भजन नहीं करने से जो पाप होता है वो पाप भी हमको लगे। उसने कहा ठीक है अच्छा जाओ, चली गई। जिसमें जा रही गैया को जब छोड़ा तो हिरण को, तो उसी समय में एकदम आनंद के मारे सिहर उठा और सिहरने से पत्ती हिल गई टहनी जिस पर बैठा था और उससे 2-4 पत्ते गिरे और साथ साथ में घड़ा का पानी उछल करके नीचे। किंतु दैववश वहां पर नीचे एक शिवलिंग रखा था, बस शिवलिंग के ऊपर में वो पानी और पत्ता पड़ गया। इस तरह से पहले प्रहर की पूजा हो। अब ये दूसरा प्रहर जबकि 12 बजे आया तो वो अपने बेटे के पास में गई हिरण। बेटा सुन करके रोने लगा, वो कहा मैं भी चलूंगा। इतने में उसकी
पति
वो बहन आई, बहन भाई आई, उसने या पति आया, बहन बोली यस मैं जाती हूँ, तुम रहो, तुम दूध पिला करके पीछे आना, मैं तो जाऊं। बस उसे बिना कहे हुए झट वो दौड़ करके चली गई, भाग ने उसको पकड़ा। उस समय में दूसरा 12 रात बज रहा था, बस झट फिर डाल हिली और पानी और पत्ता फिर शंकर जी के ऊपर में। तीसरे पहर में उसका पति उसको ढूंढते ढूंढते वहां आया, इतने में बाघ ने उसको पकड़ लिया। अजय भाई तुमने पकड़ लिया, हमारे बच्चे और ये सब वहां पर हैं, मैं उनको संतोष करके समझा बुझा करके मैं अभी आ रहा, छोड़ा नहीं। उसने भी शपथ किया, उस पर भी दया गई, उसने छोड़ दिया। उस समय में थी 3 बजे का वाला पूजा हो गई, वो पानी गिर गया। अब वो एक साथ में चारों, जब वो 6 बजने वाला था, चारों वही ना, उसका पति, उसकी
बहन
और वो लड़का, चारों उसके पास में आए
और वो कहता है जी हमको मारो, हमको खा जाओ हिरणी। पति कहता है नहीं तू हमको खा जाओ, और लड़का कहता है जी हमको खाओ, और उसकी बहन कहती है हमको खाओ। अब वो असमंजस में पड़ गए, ये क्या करें। उसी समय में इसको देखा कि ये पशु भी ऐसा कर सकते हैं, बड़ा आनंद हुआ और वो हिल गया, कांपने लगा। इतने में बसंत कर दी एकदम, उन्होंने कहा जी हमारे लिए ये बहेलिया ने ऐसी पूजा की चारों, बस उसको बर दिया, जाओ साक्षात तुमको स्वर्ग मिल जाए, तो क्या होगा, चीजें हो जाए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। और चूंकि ये सब उसी से संबंधित है, इन लोगों को भी हिरणी को, और वो जो बाघ जो बना था वो शंकर जी ही थे, वो प्रकट होकर के बोले जी मैं ही शंकर जी था, ऐसी परीक्षा करने के लिए ऐसा था, जाओ सब लोगों का कल्याण, धन धान्य से परिपूर्ण होकर के अपना सुख भोग। भक्ति नहीं, भक्ति किसको देंगे, शंकर जी जो किसी प्रकार की ही कामना वासना नहीं, वो परीक्षा करके बैरोमीटर से देखेंगे जो कोई कामना वासना तो नहीं, तब उनको भक्ति देंगे, क्योंकि ये इससे भगवान को वशीभूत हो जाना चाहता। आज के दिन यदि कोई शंकर से निष्काम इत्यादि होकर के बस कृष्ण के चरणों में, आपने जिस रूप को देखने के लिए ये रूप बनाया है गोपी का, गोपी स्वर, हम लोग भी उसी की सेवा करना चाहते हैं। आज सुनते ही एकदम आह्लादित हो जाएंगे, कहे ठीक है ठीक है। इसलिए आज के दिन में हम लोग शंकर से यही प्रार्थना करते हैं, वृंदावन में हम लोगों का भाव, और वो भी जिस रूप को धारण किए हैं उस रूप में उनकी जो ईश्वरी है श्रीमती जी है, श्रीमती जी के चरणों में हम लोगों का क्रमशः अनुराग, यही शिव चतुर्दशी का महात्मा। आज रात हो गई, आज कंचा कल्पतरुदस्य।